Hari Ram आप सबका थोड़ा इको कम करें। आप सबका अंजनपुर धाम में स्वागत है। ये जो भी यहाँ पर लिखा है वो गलत है। जो मैंने सुबह आपको बताया था वो नारायण भट्ट गोस्वामी महाराज के ब्रज रस चंद्रिका के आधार पर कहा गया सत्य है, इसलिए आपको जो सुबह बताया उसी को रखना। तो ये विशाखा सखी का गांव है, अंजनपुर, लोकल भाषा में इसको अंजनोक कहते हैं। और यहाँ की लीला अभी तुरंत बता देते हैं। एक समय राधा रानी कृष्ण भगवान को मिलने के लिए श्रृंगार कर रही थी और उनको यहाँ पर मिलने का तय हुआ था। हम जानते हैं ब्रज में वृंदा देवी जो है वो राधा कृष्ण की लीला का आयोजन करती हैं। उसके पास में 1000 तोता हैं और 1000 तोताओं के कई असिस्टेंट हैं, ऐसे करोड़ों तोताओं को, इसको बंद करो, करोड़ों तोताओं को वृंदा देवी मैनेज करती है और पूरे ब्रज में जहाँ जहाँ सुंदर वातावरण है उसकी पूरी जानकारी वृंदा देवी कर लेती है। उसके बाद में फिर संजय को, गोपियों को, कृष्ण भगवान को, राधा रानी को कहाँ मिलवाना है, इसका पूरा आयोजन, पूरा भोजन, रंग संगति, कौन से फूल, कौन से वस्त्र, कौन सा राग, कौन सा ताल, कौन सा भजन, कौन सा गीत, ये सब कुछ बहुत सुंदर व्यवस्था वृंदा देवी करती है। और पूरे ब्रजभूमि में जगह जगह उनका स्टोर हाउसेस हैं, यहाँ पर वो वस्त्र, अलंकार, फूल, रंग संगति, हर प्रकार के कैनपीज, हर प्रकार के आयोजन उस स्टोर में होता है। तो उस दिन अंजन वन में, तभी उसका नाम अंजन वन नहीं था, इस वन में विशाखा देवी के जन्म स्थान पर मिलने का तय हुआ था। और राधा रानी का श्रृंगार उनके घर भानु महल में बरसाने में किया जा रहा था सखियों द्वारा। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर जल्दी आ गए, होता है ऐसा कभी कभी, कभी जल्दी भी आते, कभी देर से भी आते, कभी वो भी देर से आते, कभी वो भी जल्दी आ जाते, ये सब लीला के वृद्धि के लिए होता है। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर जल्दी आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद में वो मुरली बजाते हैं। अभी आप जब काम में वन जाएंगे तो मुरली की कथा वहाँ पर अलग से होगी, लेकिन संक्षेप में जब भगवान मुरली बजाते हैं तो 8वें स्वर में जब मुरली बजाते हैं तो राधा 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 पुकारते हैं। मुरली केवल राधा का ही नाम पुकारती है और जहाँ पर भी राधा रानी है वहीं उसको सुनाई देता है और किसी को सुनाई नहीं देता। 8 स्वरों में से मुरली के 1 स्वर डेडिकेटेड फुल्ली टू राधा रानी। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं अकेले हैं, तुरंत 8वां स्वर बजा देते हैं और वो राधा रानी को महल में सुनाई पड़ता है। जैसे वो सुनती है वो पुकार भगवान की तो एकदम व्याकुल हो जाती हो। तो इस भाव को कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव, जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था तो मैंने आपको याद कर दिया। तो ये जो होता है ना, जैसे कि देर हो रही है और देर होने की भावना में क्या क्या भाग दौड़ी होती है पूरी, उसको जल्दी जल्दी में करते हैं, उसको विशुद्ध खंडिता भाव कहते हैं। और उस भाव को, उस भाव जब प्रकट होता है तो उस भाव को मैनेज करने में ललिता देवी बड़ी निपुण हैं, शी इज एक्सपर्ट इन हैंडलिंग दिस हरी। जल्दी जल्दी में ललिता देवी राधा रानी कहती है जल्दी जल्दी श्रृंगार करो, जाना है, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और उतने में वो वहाँ से भाग जाती है, बरसाने से सीधे भाग के यहाँ से आती है। जैसे यहाँ पर भाग के पहुँचती है तो कृष्ण भगवान उसको देखकर हंस पड़ते हैं। बताओ क्यों हंस पड़ते हैं? अरे वो कहते हैं अरे तो श्रृंगार तो अधूरा ही छोड़ के आ गई, काजल तो लगाया नहीं, नेत्रों का श्रृंगार किया ही नहीं। तो वो बहुत शर्मिंदा होती है, कहते मैं दोबारा जाके करके आती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, अभी आ ही गई हो तो तुम्हारा श्रृंगार मैं पूरा कर देता हूँ। तो एक शिला पर श्री कृष्ण भगवान अपनी उंगली को घिसते हैं, उसमें से काजल निर्माण होता है और उस काजल से श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों से राधा रानी की आंखों को संवारते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। तो ये जो ललिता देवी का विशेष विशुद्ध खंडिता भाव यहाँ प्रकट होता है। और यही जो आप बैठिए यहाँ पर, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाकर, हाँ हाँ हाथ दिखाइए शिला पर। हाँ वो शिला जो है वो कजरोटी शिला है या अंजन शिला है। कजरोटी शिला यानी जिस शिला पर अपनी उंगली को घिसकर ठाकुर जी ने काजल पैदा किया था, इंग्लिश में उसको मस्कारा कहते हैं। और वहीं से आज भी उस शिला से काजल निकलता है जब आप उंगली घिसते हो, तो इसलिए उसको अंजनवन नाम पड़ा उसके बाद में, और लोकल भाषा में आंजनोक कहते हैं। तो इस कथा का सार ऐसा है कि जब हमारे मन में भगवान को मिलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ी आतुरता उत्पन्न होती है, जिसको रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, लवल्यम यानी कि ईगरनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं ईगरनेस इज द प्राइस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ईगरनेस जो है, आतुरता जो है, ये कृष्ण भावना की प्राप्ति की कीमत है जो हमको चुकानी पड़ती है। तो राधा रानी भगवान के मुरली की धुन सुनकर इतनी व्याकुल हो गई, इतनी आतुर हो गई, इतनी लौल्य को प्राप्त किया उन्होंने कि सीधे भाग के आई वहां से। और जब उनके भाव को भगवान ने देखा तो भगवान ने बचा हुआ श्रृंगार खुद पूरा कर दिया। इसलिए जब हमारे अंदर भगवान की सेवा के लिए आतुरता, ईगरनेस, लौल्य उत्पन्न होता है और हम भाग कर भगवान की सेवा में दौड़ के आते हैं आतुर होकर, तब हमारे अंदर में जो कमियां होती है वो ठाकुर जी पूरा कर देते हैं। सो वी डोंट हैव टू वरी। सो प्रभुपाद नेवर सेड दैट कंप्लीटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ सर्विस इज द परफेक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ही सेड ईगरनेस इज द परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि आतुरता लौल्य होने पर जो भी कमियां हैं वो स्वयं भगवान पूरी कर देते हैं, इसलिए हमको चिंता करने की कोई बात नहीं। इसी वन में आप जब आए तो आपके बाईं ओर एक कुंड दिखाई पड़ेगा आपको, उसका नाम किशोरी कुंड है। उस किशोरी कुंड के किनारे में बैठकर राधा और कृष्णा बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं, उसमें स्नान भी करते हैं, जल विहार भी करते हैं, उसके किनारे बैठकर बातें करते हैं। तो किशोरी कुंड जो है भगवान के अंतरंग लीला का स्थान है। इस वन का बहुत सुंदर वन है, विशाखा देवी का जन्म स्थान है, निवास स्थान भी है। और विशाखा देवी जरा निकालो, विशाखा देवी जो है वो सत्यभानु महाराज और नव यौवनी देवी इनकी कन्या है। विद्युतवत उनकी कांति है, हर ए कम्प्लेक्शन इज लाइक लाइटनिंग इन द स्काई। वो तारावली मतलब तारों के जैसे रंग का वस्त्र परिधान करती है, हर ड्रेस इज लाइक स्टार्स। उनका कुंज जो है उसका नाम है वसुधा कुंज, और वो मेघ वर्ण का कुंज है। प्रधान वर्ण जो है, रंग जो है उनके कुंज में, वो मेघ वर्ण है। उनका प्रिय वाद्य राधा रानी का ही प्रिय वाद्य है वीणा, राधा रानी का वाद्य भी प्रिय वाद्य वीणा है। उनका प्रिय राग जो है वो सारंग है, और सारंग के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। इनकी प्रधान सेवा है कि राधा कृष्ण का श्रृंगार करने में ये बहुत निपुण है, और प्रधान श्रृंगार की सेवा राधा रानी के इनके पास है। और राधा रानी को और कृष्ण भगवान को अलग अलग प्रकार का इत्र लगाने में ये बहुत कुशल है। अलग अलग प्रकार का रंग इत्र होता है, अलग अलग फूलों का होता है, अलग अलग गंधों का होता है, वो किस समय कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है इसमें इनकी कुशलता है। मधुमती मंजरी, रस मंजरी और गुण मंजरी, ये तीन इनकी प्रधान सेविकाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया हर एक सखी की तीन प्रधान सखियां होती हैं असिस्टेंट, तो इनमें की इनकी जो है मधुमति मंजरी, रस मंजरी और गुण मंजरी। अभी एक श्रृंगार में होता है पत्रावली, पत्रावली यानी आप देखते ना राधा मदन मोहन जी या दामोदर जी के मंदिर में, गोपीनाथ जी के मंदिर में, वृंदावन में, गोविंद जी के मंदिर में जयपुर में, वो गाल पर बनाते ना डिज़ाइन, उसको पत्रावली कहते हैं। वो पत्रावली बनाने में विशाखा देवी बड़ी निपुण हैं, और किसी भी वस्त्र पर जो ठाकुर जी को पहनाया जाएगा, अभी कैसा है हमने बताया कि वो श्रृंगार करने बहुत एक्सपर्ट है, ये बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन श्रृंगार बहुत विविधतापूर्ण होता है, उसमें अलंकार होते हैं, उसमें फूल होते हैं, इसमें जड़ी बूटी होती है, इसके अंदर इत्र होता है, इसके अंदर कवच कुंड कान के कुंडल होते हैं, पैर के घुंघरू होते हैं, ऐसे कई प्रकार के श्रृंगार का विविधता है उसके अंदर। तो वस्त्रों पर बेल बूटा बनाना यानी कि एम्ब्रॉयडरी करना, इसमें भी विशाखा देवी बहुत निपुण हैं। और इनके आपने सुना होगा ना वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मानो हर। इसके भजन के अंत में एक कड़ी ऐसी है कि हास परिहास हो रहा है, क्या लाइनें हो, हास्य परिहास संभाषणे, ये जो हास परिहास है ये राधा कृष्ण के मिलन के लीलाओं के अंदर एक प्रधान चीज है, जस्ट टू क्रिएट अ लाइट मूड ऑफ हैप्पीनेस जोकिंग। तो वो जो हास परिहास है किसी भी वातावरण को बहुत हल्का कर देना और प्रसन्न कर देना, मन को बहुत मनोहर कर देना, ये हास परिहास की लीला में विशाखा देवी बहुत निपुण हैं, ये बड़ी विद्वान हैं, और किसी भी समस्या पर सलाह देने में ये बहुत निपुण हैं, शी इज अ वेरी एक्सपर्ट एडवाइजर, एनी टाइम एनी डिफिकल्टीज देयर शी इज कंसल्टेड, एंड देन द कंसल्टेशन वट एवर इज गिवन ललिता देवी इज एग्जीक्यूटिव। हरि बोल। सभी गोपियां इनके ही निर्देश के अनुसार, इनके गाइडेंस के अनुसार भगवान के वस्त्रों को संभालते हैं, भगवान के कुंजों के बेलियों को मेंटेन करते हैं, पेड़ों को मेंटेन करते हैं, और विशाखा देवी के निर्देश के अंदर वृंदा देवी जो प्रधान आयोजिका हैं वो वृंदा देवी के निर्देश पर कार्य करती हैं, और उनके अंडर फिर सारे कुंजों का निकुंजों का मेंटेनेंस, सारे फूलों का मेंटेनेंस, बेली वृक्ष लता बेली द्रुम इनका सब मेंटेनेंस वो करते हैं। यहाँ ही के आगे 1 किलोमीटर एक गांव है लोधोली, उस गांव की जिला ऐसी है कि लोधोली में ललिता देवी ने भगवान को दही खिलाया था। ऐसे हर एक 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 लाइन पर एक एक नाव है और नाम है और गांव है। जैसे एक गांव में भगवान ने गेंद खिला था, उसका नाम क्या है, गेंदोवा। ऐसे जहां जहां भगवान ने क्या क्या किया है उसी पर सब गांव के नाम है लीला के आधार पर। तो ये लीला अभी संक्षेप में मैंने समाप्त की अंजनों की। दो वनों में हम लोग नहीं जा पाए, एक में एक नाम है उसका खदीर वन। इस खदीर वन में नंद महाराज के बड़े भाई उपनंद बाबा अपने गायों को पानी पिलाते थे। इस खदीर वन में बहुत कत्था के वृक्ष थे, खदीर खदीर आदि वटी जो गले को ठीक करते ना, उसके वृक्ष उस वन में थे, इसलिए इसका नाम खदीर वन पड़ा है। उस वन में संक्षेप में कहा जाए तो लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी थी। उसी वन में नरोत्तम दास महाराज जी रात को जाकर अंधेरे में उनकी विष्ठा की जगह साफ करते थे। फिर एक दिन छुपकर लोकनाथ जी महाराज ने उनको पकड़ा और पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो आँखों में आंसू लेकर वो वहाँ पर सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दीक्षा की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप तो राजकुमार हो, मैं तो फकीर हूँ, यही तो बात है समझने वाली, मैं अपने आप को राजकुमार समझता हूँ लेकिन मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दीक्षा चाहता हूँ। तो उसी वन में भली भोर के समय लोकनाथ जी महाराज ने नरोत्तम महाराज को, दास महाराज को दीक्षा दिया और शिष्य के रूप में स्वीकार किया और तुरंत जीव गोस्वामी को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वो इतने विरह की भावना में थे कि आगे शिष्य को परवरिश या शिक्षा देने की स्थिति में नहीं थे वो। उसी वन में जब कृष्ण भगवान अपने वत्सपाल लीला कर रहे थे, वत्सपाल लीला का मतलब है जब बछड़ों का सेवा कर रहे थे, बछड़ों का गौचारण कर रहे थे, तो उस समय वो जब खेलते खेलते जाते हैं उस दिन क्या देखते हैं, तो एक बड़ा बगुला जो है जिसका सिर जो है वो वज्र के समान कठिन है और बादलों में घूम रहा है, ऐसा भयंकर दृश्य वहाँ दिखाई पड़ता है, सफ़ेद रंग का मानो एक पर्वत खड़ा है वहाँ पर। जैसे ही ग्वाल बाल खेलते खेलते पहुँचते हैं तुरंत वो चोंच खोलकर कृष्ण को निगल जाता है, तो सब ग्वाल बाल चिल्लाते हैं, ए खायरो ए खायरो ए खायरो ए, मतलब खा रहा है खा रहा है खा रहा है, इसलिए गांव का नाम क्या पड़ा, खायरा। खायरो है मतलब खा रहा है खा रहा है। तो भगवान को निगल लिया उसने, तो क्या हुआ, अभी परम ब्रह्म परम भगवान सबके त्राता सबके पालन करता गए, सब ग्वाल बाल रोने लगे और सब देवता अभी क्या कहते हैं ना, वो डेस्परेट कंडीशन, अभी हमारे स्वामी तो गए, अभी हमको अपना आखिरी प्रयत्न करना चाहिए इसको खत्म करने का। तभी तो वो लंबा वर्णन है, मैं अभी नहीं करूँगा, इधर गर्ग संहिता में उसका वर्णन आता है कि सारे देवता एक एक करके अपना सर्वोच्च अस्त्र जो है, फॉर एग्जाम्पल यम का यमदंड, ब्रह्म का ब्रह्मदंड, इंद्र का वज्र, वायु का वायुव्यास्त्र, अग्नि का अग्नेयास्त्र, और देवी का निहार, चंद्र का निहारिका वस्त्र, देवी का तलवार, ऐसे सारे जितने जितने देवताओं के जितने जितने प्रधान अस्त्र हैं वो सब लेकर अपनी आहार आघार करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उससे उसका टस से मस्त नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं होता है उसको। और आखिर में ऐसा सीन आता है आकाश में कि एक बगुला बकासुर सब देवताओं को आकाश में खदेड़ रहा है, सब लोग चारों दिशा में जान लेकर भाग रहे हैं, ऐसा भयंकर दृश्य आकाश में आता है। फिर ये सब देवता जब अपने सर्वोच्च अस्त्रों का प्रयोग करके परास्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तब जाकर भगवान अंदर से उष्ण हो जाते हैं और विस्तारित हो जाते हैं, ये बिकम्स हॉट एंड ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ, तब गले में गर्मी अग्नि आँच का अनुभव करके तुरंत वो चोंच खोलकर भगवान को निगल उगल देता है, और भगवान बाहर गिरते दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, तो भगवान पूंछ लेकर उसकी पकड़ते हैं, उसको गोल गोल हवा में घुमाते हैं और पटकते हैं, फिर भी वो मरता नहीं है, फिर उड़ता है, फिर चोंच खुला करके भाग के आता है, तो भगवान एक चोंच पर पांव रखते हैं और दूसरी चोंच को खींच कर फाड़ कर बकासुर का वध कर देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। बहुत कठिन है इस कथा को संक्षिप्त बताना, बहुत सुंदर कथा है। एनीवेज महामाधव सरोवर है खदीर वन में, उस माधव सरोवर के किनारे में इस बगुला का बगुला आया था और उसका वध हुआ। तो ये कहानी जो है वो नारद मुनि बहुलाश्व को सुना रहे हैं, वो क्या करते कहते हैं नारद मुनि की जैसे ही बगुले का देहांत हो गया तो उसकी आत्मा जो है भगवान के शरीर में जाकर विलीन हो गई, तो उसने प्रश्न किया ऐसे कैसे हो सकता है इतना बड़ा पापी, तो उन्होंने इसको पूर्व कहानी बताई कि एक जाजली मुनि थे, बहुत सिद्ध बाबा थे वो, उनके आश्रम में सभी प्राणी जो शत्रु प्राणी भी होते हैं सब लोग एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, ऐसा वातावरण था, सभी मित्रता द्वेष रहित। तो वहाँ पर हयग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसका भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वध किया था, वह और लंबी कहानी छोड़ दो उसको। हयग्रीव का पुत्र था उत्कल नाम का, वो उत्कल इतना शक्तिशाली था, इतना सिद्धि प्राप्त किया था उसने कि उसने 100 स्वर्गीय वर्षों तक सभी देवताओं को अपने स्थानों से खदेड़ कर पदाक्रांत करके राज्य किया था, 100 ईयर्स, सब देवता भाग गए थे उसके भय से। तो वो मदमत्त होकर इस मुनि के आश्रम में आता है गर्व और अपनी शक्ति के मद से, उसके हाथ में बांसुरी होती है छेद वाली, तो वहाँ पर एक कुंड में ऐसे छेद में छेद वाली बांसुरी डालता था, जो मछली उस छेद वाले मुरली में आती थी उसको निकाल कर तुरंत मुंह में डालता था, वापस जल के अंदर मुरली, मछलियाँ घूमते घूमते आ गई तो वापस मुंह में। तो मुनि जी वहाँ पर आए, बोले अरे हमारे आश्रम में कोई भेदभाव युद्ध वुद्ध कुछ होता नहीं, यहाँ पर किसी का कोई वध नहीं करता, सब लोग मित्रता में रहते हैं, तुम ऐसा क्यों काम कर रहे हो, तो ऋषि को दुर्लक्ष करता है और फिर उसके सामने खाने लगता है। तो ऋषि कहते हैं मछली खाने का बड़ा शौक है, जा तू बगुला बन जा। और एक क्षण के अंदर उसका सुंदर देवता जैसा शरीर था उसका बहुत सुंदर बगुला बन जाता है, दिखता है अरे बगुला बन गया, तुरंत अहंकार चूर हो जाता है, नम्र होकर ऋषि के चरणों में गिरता है वो कहते महाराज जी माफ़ कर दो, हमने से गलती हो गई, हम अहंकार के वश आपका अपराध कर बैठे। तो महाराज ने कहा शाप तो दे दिया, अभी आपकी नम्र अवस्था को देखकर उस शाप दे देते हैं कि द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तो उनके हाथों आपका वध होगा। इसीलिए क्योंकि ऋषि का वरदान था कि कृष्ण के हाथों वध होगा, इसलिए कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सके, सभी देवताओं पर हावी हो गया वो। और इसीलिए उसके मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई। तो ये खदीरवन की लीला है, खदीरवन भगवान की बाल लीलाओं का स्थान है। वहाँ पर भगवान जब बच्चे थे कृष्ण बलराम जी, तो छोटी छोटी गैयाओं को लेकर खदीरवन में लीला करते थे, बाल लीलाओं को। और एक सुंदर आखिरी वन की लीला मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोग अगर किसी को नींद आती होगी तो इस कथा के लिए आप खड़े हो जाओ, इतनी सुंदर कथा है ये। आप सबने महाभारत की कथा सुनी होगी जिसमें अश्वत्थामा अंत में बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं दुर्योधन की जंघा की अवस्था देखकर, और सोचते हैं कि अभी मैं पांडवों का बदला लूँगा, उनका निर्वंश कर दूंगा सबको। तो रात को उठकर तंबू में आग लगाते हैं एक जगह से, और दूसरी ओर खड़े रहकर रात के अंधेरे में सबका सिर काट देते हैं, जो भी आता है उसको काट देते हैं। उसी तंबू में पांडवों के 5 पुत्र भी थे, वो भी मर गए। तो सवेरे पता चला कि अश्वत्थामा ने ये बहुत घिलौना कृत्य किया, तो भीम और अर्जुन बहुत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने द्रौपदी को कहा कि आप अश्वत्थामा के सर पे खड़े होकर स्नान करोगे, मरे हुए सर पे। तो कृष्ण भगवान रथ में आरूढ़ होकर सारथी बनकर बैठे और अर्जुन जी चले पड़े उनके पीछे। तो ये देखकर अश्वत्थामा भी रथ में बैठकर भागने लगा दूर दूर तक। उसके घोड़े जो है वो उनके मुंह से झाग आया और बेहोश हो गए। तो अश्वत्थामा रथ छोड़कर भागने लगा, तो भगवान भी रथ से उतरे, अर्जुन भी रथ से उतरे और पैदल भागने लगे उसके पीछे। वो जाकर उसको पकड़ा, तो उस समय भीमसेन ने तो उसको मारने की प्रतिज्ञा की थी, तो उसको लेकर आए पकड़कर, बांधकर कैदी बनाकर। द्रौपदी का आरोपी था ना वो, द्रौपदी को कहा अभी इसको दंड दो, आप जो कहोगे वो करेंगे। तो भीमसेन तो तुरंत मारने की बात कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि नहीं, जो मेरे खुद को दुख हुआ है मेरे 5 पुत्रों को खोकर, वो मैं गुरु माता कृपी को नहीं देना चाहती, क्योंकि इनका इकलौता पुत्र है, हमारी गुरु माता गुरु द्रोण और उनकी माता पहले पति को खो चुकी है वो, और सॉरी हाँ कृपी कृपाचार्य की बहन, तो मैं मेरी गुरु माता को वो दुख नहीं देना चाहती, इसलिए आप उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो उसको। बड़ी सुंदर वैष्णव जो अलंकारिक जैसा गुण है, क्षमाशीलता, उसका द्रौपदी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। फिर भी उसको मारने का भीमसेन को इच्छा थी, तो भगवान ने अर्जुन से कहा ये मरना भी नहीं चाहिए और मरना भी चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो अर्जुन तो बड़े चतुर थे, क्षत्रियों को जो अपमान होता है ना वो मृत्यु से बढ़कर होता है, तो इसकी आधी दाढ़ी आधी मूछ आधे बाल बीच बीच के ऐसे काट के उसको विद्रूप कर देते हैं, और यहाँ का मणि जो है वो काट के निकाल देते हैं। जो मणि उसकी शक्ति भी थी, सौंदर्य भी था, सब कुछ था उसके लिए, और ऊपर से भगवान शाप देते हैं उसको। ऐसा भयंकर घटना ना वो उसमें हुआ था दक्ष के यज्ञ में, दूसरी शायद ये घटना है कि भगवान इतना सारा उसका अपमान किया गया, उसके बाल यहाँ वहाँ से नोच लिए गए, मूछ आधी काटी गई, दाढ़ी भी आधी काटी गई, उसको वस्त्रों को ऐसा निर्वस्त्र ऐसा कर दिया, बहुत अपमानित कर दिया। मतलब वो सोच रहा था कि मर जाना अच्छा है ये सब अनुभव करने के बदले में। ऊपर से मणि काट दिया और ऊपर से भगवान ने शाप दिया कि ये जखम कभी भी नहीं भरेगा, इसमें खून और पीप अनंत बहता रहेगा और दर्द इसमें इतना होगा कि तुम मरना चाहोगे उस दर्द की वजह से, लेकिन इतने भयंकर दर्द के बाद में भी तुम मर नहीं पाओगे, अभी जाओ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ऐसा भगवान ने किसी को अगर शाप दिया तो क्या उसकी स्थिति होगी। हाँ, इतना भयंकर दर्द अश्वत्थामा ने अनुभव किया, दर दर भटकता रहा वो उस दर्द की वजह से, कोई दवा कोई जड़ी बूटी कोई साधु का आशीर्वाद किसी भी प्रकार से उसका दर्द कभी निवारण नहीं हुआ। अनंत काल तक उसमें से पीप और खून बहता रहा, हर समय उसने मरना चाहा लेकिन उसको जीवित रहने का भी शाप दिया गया था। ऐसे भयंकर अवस्था में इतना बड़ा अपराध भगवान के भक्तों का उसने किया था, तो भगवान ने स्वयं उसको इतना भयंकर शाप दिया था। दर्द से बेहाल होकर अश्वत्थामा जी कैलाश गए शिव जी के पास और विनती किया वहां पर, मुझे बचाओ। तो शिव जी ने कहा कि सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे स्वामी ने आपको शाप दिया, हम क्या कर सकते उसमें। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने वही कहा, हमारे स्वामी ने आपको शाप दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर गिड़गिड़ाए बहुत, कुछ तो उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, आप बरसाने जाओ और वहां श्री जी की आराधना करो, राधा रानी को वंदन करो, तब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो हाई कमांड है ना। हमारे स्वामी तो है अपनी जगह पर, लेकिन वो उनका हाई कमांड है। तो बड़ी आशा लेकर, बड़े दर्द में तड़पते हुए हर्षोत्तमा यहाँ पर आए। वहां पर उसने भजन किया, रो रो कर राधा रानी को पुकारा। तब राधा रानी ने उनको दर्शन दिया पिपासा वन में, तो यहाँ से बहुत 3 किलोमीटर आगे, लेकिन बहुत अंदर है और शायद 4-5 घंटे जा सकते हैं उसके अंदर जाने आने में। तो पिपासा वन वो जगह है जहाँ पर राधा और कृष्ण अपने मिलन की प्यास, उत्कट प्यास, तीव्र प्यास रासलीला के माध्यम से बुझाते हैं। एक होती है प्यास और एक होती है उत्कट प्यास, उसको पिपासा कहते हैं। तो अपने मिलन की जो पिपासा है वो उस वन में रास करके राधा और कृष्ण पूर्ण करते हैं, उसको तृप्त करते हैं अपने आप को। और उस वन में जब रास रचाते हैं तो वहाँ पर खारा पानी है। तो एक बार रास में राधा रानी को बड़ी प्यास लगी, थक गई वो, तो कृष्ण भगवान ने मुरली से कुंड बनवाया मीठे पानी का और राधा रानी को जल पिलाया और संतुष्ट कराया। तो वो है श्याम कुंड। फिर कृष्ण को एक बार प्यास लगी तो राधा रानी ने कुंड बनाया और भगवान को मीठा जल दिया, उसका नाम है राधा कुंड। तो पिपासा वन में एक और सेट है, राधा कुंड और श्याम कुंड का, बहुत सुंदर, बहुत विशाल वो स्थान है। तो उस स्थान पर राधा रानी ने उसको दर्शन दिया, तो प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी पश्चाताप की भावना से प्रसन्न हूँ, आज से तुम दर्द मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी जख्म भी भर जाएगी और तुम वेदना से मुक्त हो जाओगे। तत्क्षण अश्वत्थामा को माफ़ी मिली वहाँ पर और वो मुक्त हो गए दर्द से। लेकिन उनको तो जीवित रहने का भी शाप था। उन्होंने कहा अभी यही रहो आप और मेरे इस प्रिय पिपासा वन की रक्षा करो और यही भजन करते रहो और रक्षा करो। तो आज भी अश्वत्थामा वहाँ निवास करते हैं। जो साधुगण भजन करते हैं शुद्ध हृदय से, उनको अश्वत्थामा दर्शन भी देते हैं। और पिपासा वन की एक विशेषता है कि वहाँ पर बहुत झाड़ी है, ब्रजवासी उनको झाड़ी ही कहते हैं, वो कहते हैं पिसाया की झाड़ी, ऐसा उसको बोलते हैं, नाम उसका पिपासा वन है। इतनी उसमें झाड़ी है, वो कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ के लिए लकड़ी ले जाता है तो या तो वो अंधा होता है, या तो वो पैरलाइज होता है, या तो मर जाता है। अगर आप वहाँ की लकड़ी भगवान के भंडारे के लिए, भोजन बनाने के लिए लेते हैं तो कुछ नहीं होता है, वो ले सकते हैं। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए कोई अगना कार्य करने के लिए लकड़ी ले जाते हैं तो, अभी एक महीने के पहले की बात है, एक व्यक्ति ऐसा उद्दंड व्यक्ति खदीर वन से वहाँ गया और लकड़ी लेके आया, जब खदीर वन लौट के आया तब तक वो अंधा हो गया था। तो बड़े बुजुर्ग बुजवासी थे, उस रहस्य को जानते थे, उन्होंने कहा पागल तुरंत जाके लकड़ी छोड़ के आ, वापस छोड़ने गया तो फिर दृष्टि उसकी वापस आ गई। और कई लोग साहस करते हैं, अरे हम तो विश्वास नहीं करते इस बात पर, या तो वो मर गए हैं, या तो वो जीवन भर के लूले लंगले हो गए हैं, या तो वो अंधे हो गए हैं। इसलिए वहाँ के ब्रजवासी जब लकड़ी वहाँ की तोड़ते हैं, कोई भंडारा है समझो, भागवत सप्ताह है, कोई पवित्र कार्य है, वो लकड़ी तोड़ के ले जाते हैं उसको, तो कुछ लकड़ी बचती है ना कभी कभी, तो वो लकड़ी जाकर इकट्ठा करके दोबारा वन में छोड़ के आते हैं। तो उस वन में ऐसा दृश्य मिलेगा आपको कि आप अंदर जाएंगे वन के अंदर, तो जगह जगह आपको लकड़ी रची हुई नजर आएगी, ऐसे बहुत सारे रची हुई के ढेर नजर आएंगे आप, क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने एक्सेस लकड़ी लेके गए वहाँ पर आकर उसको रचा कर रखते हैं ताकि अगले आदमी उसको लेके जा सकते हैं। ऐसा अद्भुत वन है पिपासा वन, बहुत सुंदर वन है और इतना एकांत स्थान है कि वहाँ पर भजन करने के लिए बहुत अनुकूल जगह है। वो शांत बैठकर आप वहाँ पर ठाकुर जी का भजन कर सकते हैं। पिपासा वन धाम की, अंजनोक धाम की, खदीर वन धाम की, बरसाना धाम की, जय जय। इस जगह पर आप प्रार्थना कीजिए क्योंकि अंजन बिहारी जी का और भी एक रहस्य ऐसा है कि गुरुदेव क्या कहते हैं हम लोग, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी के आँखों का अंजन से श्रृंगार करते हैं, वैसे गुरु महाराज हमारे आँखों में ज्ञान का और प्रेम का अंजन देते हैं, तब जाकर ठाकुर जी का दर्शन होता है। और साधुगण जो है इसी प्रेम के अंजन के माध्यम से ठाकुर अपना ठाकुर जी का हृदय में दर्शन करते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदय से विलकयंती। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वही अंजन प्रेम का ज्ञान का हमें भी प्राप्त हो गुरु और वैष्णव की सेवा से। और विशाखा देवी से प्रार्थना करना कि वो भी आपको भगवान की सेवा में लगाएं लगाएं रखें और आपका जीवन जो है परिपूर्ण हो जाए। हमें वो आतुरता प्राप्त हो जो राधा रानी ने प्रदर्शित की, और वो आतुरता की वजह से हमें ये उम्मीद है कि सभी हमारी त्रुटियाँ भगवान पूरी करेंगे। श्री राधा अंजन बिहारी भगवान की जय। जय श्री राम। हाँ, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था मुझे कि वृंदावन में इतने कांटे क्यों हैं सब जगह पे, तो उसका कारण यह है कि उद्धव जी, बड़ी लंबी लीला है वो, उद्धव जी यहाँ पर आए थे भगवान का संदेश लेकर यशोदा माई के लिए, नंद महाराज के लिए, ग्वाल बालों के लिए और गोपियों के लिए खास करके। तब जो उद्धव क्यारी में उनकी मुलाकात हुई, जंगल में एकांत में उनको अपने हृदय को व्यक्त करना था, तो उस जगह पर बहुत लंबी कथा है वो, गोपियों ने अपना अंतरंग प्रकट किया वहाँ पर, और इतना उत्कट इतना तीव्र वो उनका भाव प्रकट किया उन्होंने कि उद्धव जी तो बड़े दंग रह गए। वो तो आए थे योग सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, बड़े बड़े प्लानिंग करके आए थे, गोपियों को हम लोग सांत्वना देंगे और ज्ञान के माध्यम से उनको सुख दुख से मुक्त करके विरक्त बनाएंगे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाए, पूरी तरह से वो फेल हो गए अपने प्लान में। लेकिन उनकी आँखें ज़रूर खुली कि ऐसा भी कोई प्रेम होता है जो मैं भगवान के इतने निकट होकर भी उसको अनुभव नहीं कर पाया, और ये भगवान से इतनी दूर रहकर भी इतना उत्कटता से भगवान का भाव रूप में संग कर रहे हैं, इतने निकट भगवान से हैं, इतनी दूर रहकर, और मैं इतने पास रहकर उनसे कितना दूर हूँ, ऐसा अद्भुत अनुभूति उनको हुई। तो उस स्थान पर उद्धव क्यारी में ऐसे उत्कट भाव विचित्र रूप से प्रकट हुए, तो उद्धव जी के मन में ऐसा आया कि ये ब्रिज में कोई भी गलत व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए जो उसके योग्य नहीं है, जो उसको समझने में और ग्रहण करने में योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसलिए उनको रोकने के लिए उद्धव जी ने सब जगह कांटे लगाए ताकि वो कांटों को सहन करके जो आएगा वो सच्चा भक्त होगा, उसी को ये रस मिलेगा। अन्य जो कोई अयोग्य व्यक्ति होंगे, अनक्वालिफाइड, वो सब कांटों को एक बार लगते ही भाग जाएंगे यहाँ से। इस भावना से उद्धव जी ने इस धाम के पवित्रता को, सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए सब जगह कांटे लगाए। हरे कृष्णा। तो वो कांटों को देखकर या कांटों को लगने के बाद में हमको दुख नहीं करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम यहाँ आने के योग्य हैं कि नहीं हैं, ये विचार मन में आना चाहिए। और गुरुदेव कहते हैं कि एक एक कांटों के साथ में कई कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं, सो बी थैंकफुल ऑल्सो। और वो कांटों को लगते हैं आपको ये भी विचार करना चाहिए कि ब्रजभूमि कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान और कितनी दिव्य है, और फिर भी अयोग्य होते हुए हमको यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है, और एक कांटों के प्राइस पे हमको यहाँ पर एंट्री मिल रही है, थैंक यू वेरी मच, ऐसे भी सोचना चाहिए। श्री उद्धव जी महाराज की, श्री ब्रजभूमि की, हरे कृष्णा।